सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं साहुवर्छायिर्ये अरहन्ते वन्दिऊणसिद्धेवी जे पञ्चलोगवाले वोच्छं बन्धस्य सामित्तम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त होता है। इसका तृतीय खंड शुरू हो जाता है आज। उसका नाम है बंध सामित्त विचो, ये प्राकृत नाम है। संस्कृत में कहने तो बंध स्वामित्व विचय, ये पूरे ही पुस्तक में वही विषय चलेगा। अब वो बंध क्या है, स्वामित्व क्या है, विचय क्या है, उसकी चर्चा आएगी भी क्रम से। अभी जो हमने मंगलाचरण पढ़ा है उसका नीचे अर्थ देखते हैं। साधु वज्झा इरिये, साहु उवज्झाय और आयरिये, यानी साधु उपाध्याय और आचार्य। हमें आचार्य उपाध्याय साधु कहने की पद्धति हमें आदत हो गई ना, तो यहाँ साधु उपाध्याय आचार्य अरहंत और सिद्ध क्रम से नीचे ऐसा उल्टा क्रम लिया। ये जो पांच लोकपाल ऊपर लिखा ना, पंच लोग वाले, पांच लोकपाल यानी लोक में उत्तम जो है अर्थात लोकोत्तम परमेष्ठी है, ये तो हमें उसका अर्थ मालूम है, परमेष्ठी परम पद में तिष्ठने वाले, उसको परमेष्ठी कहते हैं, या परम जो इष्ट है हमें, हितकारी है हमें, सर्वोत्कृष्ट ऐसे जो है, उनको नमस्कार करके बंध के स्वामित्व को कहते हैं। कोई भी आचार्य अभी यहाँ जो स्वयं भूतबली और पुष्पदंत जो है, उन्होंने जब इसकी रचना की थी तो मंगलाचरण में वो बता दिया उन्होंने। अब यह सूत्र हम पढ़ेंगे क्रम से। प्रत्येक ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करने की पद्धति है, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके ये ग्रंथ की आदि होती है। कोई भी आचार्य स्वयं ग्रंथ लिखते हैं तो भी वो आचार्य साधु उपाध्याय सबको नमस्कार करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अभी आचार्य हूँ तो मुझे किसी को नमस्कार करना नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी का पद छठा सातवा गुणस्थान है उनका भी, तो अन्य जो साधु कहने से तो सभी साधु ही है ना, छठे से लेकर ऊपर तक के सभी साधु ही है, तो सबको नमस्कार करते हैं, और जब नमस्कार करने वाले तो छठे गुणस्थान वर्ती है, तो वहाँ तो वंदन करने का भाव है अभी वहाँ शुभराग। और कोई ग्रंथ आरंभ करते हैं तो सबसे पहले में पहले मंगलाचरण में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करके उसकी शुरुआत की जाती है। और इसमें कौन सा विषय बताने वाले वो भी बता दिया कि बंध स्वामित्व कहूँगा। कहूँगा कहने से अपने मन से चाहे जैसा कहूँगा ऐसा अर्थ नहीं होता, जैसे तीर्थंकर भगवान ने बताया है जो परम्परा चली आ रही है उसके अनुसार ये कथन करूँगा, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा होती है पहले में पहले, उसको अभी हम देखेंगे। पहले सूत्र में कहते हैं, जो सो बंध सामित्त विचो नाम तस्य इमो दुविहो निर्देशो ओघेन आदेशेन य। जो वह बंध स्वामित्व विचय है तस्य इमो दुविहो निर्देशो, यानी उसका यह निर्देश, दुविहो ने दो विध दो प्रकार से, कौन से दो है, ओघ और आदेश की अपेक्षा दो प्रकार का है। हमने ओघ और आदेश ये पहले शब्द आ चुके हैं, हाँ, ओघ किसके कहना, गुण स्थानों को ओघ कहते हैं और आदेश मार्गणाओं को कहते हैं, मार्गणा स्थानों को। दूसरा विषय, एक दूसरा भी नाम है उसके लिए, सामान्य और विशेष। बहुत अच्छा। तो ये जो बंद स्वामित्व विषय है, अभी विषय क्या है बंद स्वामित्व का, इसकी भी चर्चा आएगी, परंतु विषय का अर्थ है विचारना, मीमांसा, उसकी उसकी परीक्षा करना, यानी बंध के स्वामी कौन है उसकी यहाँ चर्चा चलेगी, उसकी मीमांसा चलेगी। और यह निर्देशन, यह कथन किस अपेक्षा से, दो प्रकार से होगी, गुणस्थानों में भी और मार्गणा स्थानों में भी। अकेले गुणस्थानों में भी बताए, जैसे हम तो 1 से 14 गुणस्थान में बता देंगे किसको बंध है किसको नहीं और कहाँ कौन सी विच्छेद आदि होती है, उसकी बात चलेगी। बंधक तो 13वें तक है, तो उसकी तो बात गुणस्थानों से हो जाएगी। अब गति मार्गणा में है तो कौन से गति वाले कौन से गुणस्थान तक, यानी मार्गणाओं में फिर गुणस्थान लगाएंगे, उसको कहते ओघ से और आदेश से। शंका, किस प्रयोजन से यह सूत्र कहा जाता है, उसका समाधान, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बतलाने के लिए उक्त सूत्र कहा गया है। संबंध ने वो बंध, अभी बंध का स्वामित्व, उसका संबंध बताना है ना, ये बंध करने वाले जीव कौन है, तो उसका संबंध बताना है। अभिधेय ने नाम, उसका नाम भी बताना है, और प्रयोजन, उसका प्रयोजन तो आ जाएगा, कहाँ कौन से बंध है, कौन सी विच्छित्ति कहाँ होती है, ये बतलाने के लिए ये ऊपर का सूत्र कहा है। जो वह बंध स्वामित्व विषय है, इससे संबंध कहा गया है। जो वह कहा ना, जो वह है वो अभी बताएंगे, तो ये संबंध सूचित करता है। यथा, उसका संबंध किसके साथ है, कहाँ से ये सारी बातें निकाली, कृति, वेदना आदि 24 अनुयोग द्वारों में। पहले हमने धवला पुस्तक पहले में ये षटखंडागम की रचना कैसे हुई है और उसको आधार कौन सा है, तो उसके पूरे ही ये प्रथम श्रुत स्कंद वगैरह, द्वितीय श्रुत स्कंद कैसे निकले, कौन कौन से अनुयोग से, या उसके कौन कौन से अनुयोग द्वार, जहाँ कहा ना 24 अनुयोग द्वार, उसके जो पूरा ही टेबल हमने देखा था, और उसमें से कौन से विशिष्ट भाग में से इसकी रचना की है, उसकी बात आई थी, तो उसको यहाँ बता रहे हैं। ये जो 24 अनुयोग द्वारों में बंधन नाम का जो छठा अनुयोग द्वार है, अभी हम भूल गए होंगे तो दोबारा जाके देखना, पहले पुस्तक में प्रस्तावना में भी है पूरा, वो चार्ट ही दिया है। तो उसमें से जो छठा अनुयोग द्वार है उसका नाम ही है बंधन। वो बंधन 4 प्रकार का है, बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। बंधन, ये कर्म बंध की बात चल रही है, तो बंधक यानी बांधने वाले जीव, यानी जीव की बात है, बंधक कर्म को बांधने वाले उसको बंधक कहते हैं। बंधनीय यानी जो बंधा गया है वो कर्म की बात है, बंधनीय। और बंध विधान यानी उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो क्रिया है, ये 4 उसमें प्रकार बताए गए हैं। उनमें बंध नामक अधिकार, ये जो 4 अधिकार है उसमें से जो बंध नाम का अधिकार है, वह जीव और कर्मों के संबंध का नय की अपेक्षा से निरूपण करता है। बंध ने संबंध, किस किस में संबंध, अन्य संबंधों की बात नहीं, जीव और कर्मों में जो विशिष्ट संबंध है उसको यहाँ बंध कहा है, उसकी चर्चा है। बंधक अधिकार, पहले बंध अधिकार की बात की, उसमें जीव और कर्मों का जो संबंध है उसकी बात आएगी। दूसरा कौन सा है, बंधक अधिकार, 11 अनुयोग द्वारों से बंधकों का निरूपण करता है, ये बंधक अधिकार की बात। ये हमने अभी 11 अनुयोग द्वारों से उसके बंधक जीवों की बात की थी ना, अभी 7वीं पुस्तक में। बंधनीय नामक अधिकार, 23 वर्गणाओं के द्वारा बंध योग्य और अबंध योग्य पुद्गल द्रव्य का प्ररूपण करता है। क्या बात है, देखो ये पुद्गल की 23 वर्गणाएं बताई जाती है, 23 वर्गणाओं में से कर्म नहीं बनता है, कर्म रूप जो है वो कारमान वर्गणा है, पर अन्य भी जो है ना, आहार वर्गणा है, मनोवर्गणा है, भाषा वर्गणा है, यानी जीव के साथ बंधने वाले, बंधने योग्य कुछ वर्गणाएं हैं, और ऐसी भी वर्गणाएं कि जो जीव से कुछ उसका लेना देना नहीं, जीव उसका ग्रहण नहीं करता, उसका उसके साथ कोई बंधन नहीं होता है। तो उसमें ये बंधनीय यानी बंधन योग्य और बंध योग्य और अबंध योग्य, ऐसे पुद्गल द्रव्यों का यानी उस 23 वर्गणाओं का उसमें उसके स्वरूप का कथन आता है। बहुत सारी वर्गणाएं। अब बंध विधान की बात चलेगी। ये चार अधिकार की बात कर रहे हैं। छठा अनुयोग द्वारा है बंधन, उसमें बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। तो जो यह बंध विधान है वह चार प्रकार का है। बंध की बात, बंध का विधान करेंगे वो भी चार प्रकार से कहेंगे। कैसे? प्रकृति बंध, ये हमारे फैमिलियल है ना, हम इससे परिचित है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध किसे कहना? हाँ, कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। कौन सी प्रकृति बंधी उसको हम कहते हैं प्रकृति बंध। स्थिति बंध यानी वो परमाणु जो है कर्म के, कर्म कितने काल तक बंधा हुआ रहता है उसके बाद वो छूट जाता है, उसका उदय होकर वो खिर जाता है। तो उसके अधिक उत्कृष्ट उसमें प्रत्येक परमाणु की स्थिति अलग अलग बंधेगी। उसमें अधिक से अधिक उस समय अधिक से अधिक स्थिति कितनी बंधे उसको कहेंगे स्थिति बंध। अनुभाग बंध यानी वो जब कर्म उसमें फलदान शक्ति कितनी है उसको कहते हैं अनुभाग बंध। और प्रदेश बंध यानी कितनी संख्या में परमाणु बंधे, नंबर ऑफ परमाणु जो अनंत में बनते हैं उसको कहते हैं प्रदेश बंध। उनमें प्रकृति बंध दो प्रकार का है। ये बिल्कुल अपनी सामान्य बात हुई है जो हमने यहाँ भी बहुत बार चर्चा की है। कर्म की जो थ्योरी है उसकी सामान्य चर्चा भी पहले बता रहे हैं। तो प्रकृति बंध दो प्रकार का है, मूल प्रकृति बंध और उत्तर प्रकृति बंध। सामान्य से कहेंगे तो हम कहेंगे कर्म का बंध हुआ, और उसके कर्म के हम आठ भेद करते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ये तो घाती कर्म, और वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये अघाती कर्म। ये आठ प्रकार जो है उसको कहते हैं मूल प्रकृति, उनका बंध होना उसको मूल प्रकृति बंध कहेंगे। हरेक मूल प्रकृतियों के बहुत भेद है, जैसे ज्ञानावरण के 5 है, दर्शनावरण के 9 है, मोहनी के 28 है, आदि आदि। तो ये जो उत्तर प्रकृति है यानी मूल प्रकृतियों के भेद है उनके बंध होने को कहेंगे उत्तर प्रकृति बंध। जो मूल प्रकृति बंध है वह दो प्रकार का है, एक एक मूल प्रकृति बंध और अवोगाढ़ मूल प्रकृति बंध। एक एक मूल प्रकृति बंध, एक एक मूल प्रकृतियों का बंध होना उसको मूल प्रकृतियों का बंध कहेंगे। अवोगाढ़ मूल प्रकृति बंध भी दो प्रकार का है, उसकी क्या बात है वो देखते हैं अभी। वो कौन सा है? भुजगार बंध और प्रकृति स्थान बंध। ये भुजगार की बात याद है? हाँ अरविंद भाई बोलो। हाँ बढ़ जाता है, खाली उनके साइंस कर दिए। पहले कम प्रकृति बनती थी, बाद में अधिक बंधेगी तो उसको कहेंगे भुजगार बंध। पहले जितनी बनती है उतनी ही रहेगी तो उसको कहेंगे अवस्थित। और कभी कभी ऐसे तो पहले ज्यादा बनती है बाद में कम होगी तो ही अमान हो जाएगी वे। ये अलग अलग प्रकार के यानी वो मूल प्रकृतियों की अपेक्षा, जैसे अभी हम कहेंगे कोई जीव 11वें गुणस्थान में गया और 11वें में ही उसका मरण हो गया तो क्या होगा? चौथे गुणस्थान में आएगा, देवगति में आ जाएगा, तो वहां उनकी बंधने वाली प्रकृति बहुत ज्यादा हो जाएगी। वैसे 11वें में कितने प्रकृतियों का बंध था? हाँ हाँ बोलो। एक साता वेदनीय का ही बंध था, बंध की बात है ना। और चौथे में आएंगे तो सभी बंधने योग्य हो जाएंगे। हाँ हाँ, 41 छोड़ के। पर मूल प्रकृतियों की अपेक्षा अगर हम देखेंगे, आयु तो अभी विग्रह गति में नहीं बंधेगी अगले ही समय में, परंतु आयु छोड़कर अन्य तो सभी प्रकृतियां बंधना शुरू हो जाएगी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी, अंतर, सब जो कुछ यथा योग्य है, चौथे गुणस्थान के योग्य प्रकृतियां वहां बंधना शुरू हो जाएगा। तो उसको कहते हैं भुजगार बंध। कम प्रकृति बनती थी, अधिक बंधने लगी। कभी कभी ऐसा है ना, ज्यादा बनती थी और कम हो जाएगी, तो उसको ही मान कहेंगे। तो ये जो है प्रकृतियों की संख्या में कम ज्यादा होना, उसको यहाँ कहा है, ये ज्यादा होना उसको कहते हैं भुजगार बंध। और प्रकृति स्थान बंध, ये स्थान बंध उसके अलग अलग स्थान कहेंगे हम। जैसे उत्तर मूल प्रकृति मान लेते हैं हम, सात का बंध तो निरंतर चल रहा है, परंतु सात में कितने वेरिएशंस हो जाते हैं। अभी नाम कर्म में कोई नरक गति बांध रहा है, कोई देव गति बांध रहा है। हमने देखा है जो नाम कर्म बांधता है उसके भी स्थान अलग अलग है। हमने पहले देखा था प्रकृति स्थान की बात देखी थी। नाम कर्म बांधने वाला जीव है तो कौन सा जीव कितने, अभी कोई देव गति बांध रहा है तो देव गति वाला वो नाम कर्म संबंधी 28 प्रकृति का बंध करेगा। और उसमें भी कोई तीर्थंकर प्रकृति भी बांध रहा है तो उसके साथ 29 का बंध करेगा। उसके साथ आहारक भी बांध रहा है तो 31 का बंध करे, इसका उसको प्रकृति स्थान कहते हैं। अलग अलग जगह कौन कौन से होते हैं स्थान, जैसे तिर्यंच का बंध करने वाला है तो वो कितने का बंध करेगा, या 29 का होगा या 30 का होगा। ये जो है उसको कहते हैं प्रकृति स्थान बंध। उनमें उत्तर प्रकृति बंध के समुत्कीर्तन आदि 24 अनुयोग द्वार है। ये 24 के नाम तो हमने पहले वो धवला के चार्ट में देख लेना, फिर पहले पुस्तक में उसका एक नाम बता दिया समुत्कीर्तन आदि। समुत्कीर्तन है उसका व्याख्यान करना विशेष। उन 24 अनुयोग द्वारों में बंध स्वामित्व नामक अनुयोग द्वार है, उसमें से एक अनुयोग द्वार का नाम है बंध स्वामित्व। उसका ही नाम बंध स्वामित्व विचय है। यहाँ प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, वो तो सामान्य दंड देना, यानी फुल स्टॉप। यानी इस बंध स्वामित्व विचय नाम का अभी हमारी जो आठवीं पुस्तक है उसका संबंध किसके साथ है वो बता दिया कि मूल में मूल जो 24 अनुयोग द्वार थे उसमें से बंधन नाम का जो छठा अनुयोग द्वार है, कृति वेदना वाले वो सावे, उसमें से वो बंध बंधक बंधनी और बंध विधान की बात की। बंध विधान में भी फिर वो चार प्रकार बताए, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। और उसमें भी वो अलग अलग प्रकार बताए, हाँ मूल प्रकृति बंध और अवोगाढ़। उसमें उत्तर प्रकृति बंध के उसमें जो 24 अनुयोग द्वार कहे हैं उसमें बंध स्वामित्व नाम का एक अनुयोग द्वार है। और ये बंध स्वामित्व विचय ये उसी से संबंध रखता है, ये संबंध बताया। ये जो सूत्र आए हैं वो कहाँ से आए हैं, तो मूल आगम जो है परंपरा से आए हुए हैं, तो ये इसको संबंध कहते हैं। देखो, जो बंध स्वामित्व नाम का अनुयोग द्वार है, यानी जिस अनुयोग द्वार में से ये बंध स्वामित्व विचय नाम की जो अभी यहाँ पुस्तक रूप से रचना, ग्रंथ रूप से रचना हुई है, तो ये जो बंध स्वामित्व नाम का अनुयोग द्वार है वह बंधन और बंध विधान नाम से प्रसिद्ध प्रवाह रूप से अनादि निधन है। यानी वो अनादि से ही प्रत्येक तीर्थंकर की वाणी में ऐसा आया है, तो ये अनुयोग द्वारों के नाम भी वैसे ही रहेंगे हमेशा। तो मूल में हमने बंधन शुरू किया था, वो बंधक के चार भेद देखे थे, बंध बंधक बंधनी और बंध विधान। तो ये जो मूल अनुयोग द्वार बंधन था और उसका हाँ सब डिवीजन उसकी बंध विधान था, तो ये जो बंधन और बंध विधान नाम से जो प्रसिद्ध प्रवाह रूप से अनादि निधन है, अभी हमें जो प्राप्त हुआ है वो महावीर भगवान ने जो बताया है दिव्य ध्वनि में जो बात आई उसकी बात यहाँ हमें बताई जा रही है। उसके पहले सभी तीर्थंकरों ने अनादि से ही ऐसा ही चला आ रहा है। उपदेश तो वही होगा ना, बंधने वाले तो वही वैसे ही रहेंगे, उसका विधान भी वैसा ही होगा, उसमें तो कुछ वेरिएशन नहीं होने वाला, इसलिए इसको कहते हैं अनादि निधन है। जो सो ने जो है वह जो यह ऐसा कहते ना, इस वचन से चूंकि उसका स्मरण करा गया है इसीलिए यह निर्देश संबंध का निरूपक है, जो सो कहने से, जो वही वही कौन सा, ये जो अनादि निधन प्रवाह रूप से चला आ रहा है बंधन और बंध विधान वाला, उससे ये बंध स्वामित्व विषय उसी के साथ संबंध बताता है। यहाँ जो निरूपण कर रहे हैं उस आगम परंपरा से कर रहे हैं। और यही अभिधेय का भी निरूपक है, वह इस प्रकार है, अभिधेय भी उसी के द्वारा बताया जाता है, यानी क्या, वह इस प्रकार है, यह अभिधेय कैसा है उसको बताते हैं। जीव और कर्मों का मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगों से जो एकत्व परिणाम होता है उसे बंध कहते हैं, यानी बंध के हेतु भी बता दिए। ये बंध क्यों होता है, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, इनके कारण क्या होता है, जीव और कर्मों में विशिष्ट एकत्व होता है, एकत्व होता है ना, संबंध प्रस्थापित होता है, उसकी जो कुछ एक दूसरे के साथ निमित्त नैमित्तिकपना बनता है उसको यहाँ बंध कहा भी है। अब यहाँ गाथा प्रस्तुत करते हैं। बंधे नय संजोगो पोगल दव्वेण होई जीवस्स बंधो पुण विन्नेओ बंधवियोपमोखोदु। जीव का पुद्गल द्रव्य से जो बंध रूप से संयोग होता है, वैसे तो संयोग हमारे अलग अलग प्रकार के ना, एक क्षेत्रावगाही भी संबंध हो सकता है संयोग रूप से, अनेक अन्य अन्य भी संयोग होते हैं। यहाँ कौन सी बात चल रही, कर्मों की है, इसलिए उसको बंध रूप से संयोग कहा। तो जीव का और पुद्गल जीव का पुद्गल द्रव्य से जो बंध रूप से संयोग होता है उसे बंध जानना चाहिए, और बंध के वियोग को मोक्ष जानना चाहिए। जो पहले बंधे हुए है उसका संपूर्ण वियोग हो जाना, पहले संयोग में है, हमारा भी वियोग तो हर समय चल रहा है कर्मों के साथ, शरीर के परमाणुओं के साथ, परंतु नए नए बंध भी चल रहे हैं, तो ये बंधे हुए संपूर्ण रीति से उसका वियोग हो जाना उसको मोक्ष कहते हैं। इस बंध का जो स्वामित्व है वह बंध स्वामित्व है। बंध का स्वामित्व है ने कौन से गुणस्थान वाले को कितने प्रकृतियों का बंध है, कौन से को कौन सी प्रकृतियों का बंध नहीं है, उसको बंध स्वामित्व कहते हैं। यहाँ सब ये कर्मों के बंध की बात चलेगी। उसका विचय, विचय का अर्थ क्या है, विचारणा, विचारणा का अर्थ होता है मीमांसा, और एक शब्द है परीक्षा, ये एकार्थक शब्द है। ये विचय शब्द हमने पहले भी सुना है कहीं पर, हाँ, धर्म ध्यान के जो भेद है ना, आज्ञा विचय है, विपाक विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय, धर्म ध्यान कहा है संस्थान विचय को। आप कहते जो 2 जून से होने वाला है, संस्थान विचय ने पूरे त्रिलोक की रचना आदि का विचार, आकार, उस बंध स्वामित्व विषय का यह 2 प्रकार का निर्देश है। निर्देश ने कथन, बंध के स्वामित्व संबंधी यहाँ जो परीक्षा चलेगी, निरूपण चलेगा, जो कुछ विचारना मीमांसा चलेगी, 2 प्रकार से चलेगी, ओघ से और आदेश से। चूंकि यह सूत्र देशामर्शक है इसलिए यहाँ उसका प्रयोजन भी कहना चाहिए। उन्होंने उसका संबंध बता दिया, उसका अभिधेय बता दिया, क्या है बंध क्या है, तो किसे कहना उसको भी बता दिया, और अब उसका प्रयोजन भी बताना चाहते। देशामर्शकों ने से भले सूत्र में नहीं आए तो भी उसमें वो गर्भित अर्थ है उसको खोलकर बताएंगे। शंका, यहाँ किस लिए बंध के स्वामित्व को कहा जाता है, उसका समाधान, सत्व, द्रव्य, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत्व और गत्यागति, गति आगति, बंधक रूप से जानने गए 14 गुणस्थानों के बंध विशेष के अज्ञात होने पर क्या कहते हैं, ये कुछ नाम कुछ परिचित लगते हैं कि नहीं लगते? कितने हैं गिनो? हाँ, गति आगति सकत 9, और उसके बिना भी 8 अनियोग द्वार कहलाते। तो उसमें सत्व है, वो अस्थि है उस चीज की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, पहले वो है ये सिद्ध करेंगे, फिर द्रव्य उनकी संख्या बताएंगे, क्षेत्र स्पर्शन अभी अभी हमारे सारे हो गए ना, तो वहां तो एक जीव की अपेक्षा नाना जीव की अपेक्षा अलग अलग करके 11 बताए थे, हम उसको अलग नहीं करेंगे। तो ये क्षेत्र हुआ, स्पर्शन है, काल है, अंतर है, भाव है और अल्प बहुत्व। अभी जो हमने सात्विक पुस्तक में उसमें तो भागा भाग देखा था, उसकी बात नहीं है, भाव कहा यहाँ और अल्प बहुत्व। अब यहाँ गति आगति भी है, कहाँ से आता है कहाँ जाता है आदि भी बातें उसमें आते हैं। ये बंधक रूप से जाने गए 14 गुण स्थानों के बंद विशेष के अज्ञात होने पर, यानी हम 14 गुण स्थानों में उसकी बात नहीं जानते हैं अज्ञात होने पर, यानी हाँ अभी हमें मालूम नहीं है, अननोन होने पर बंधकत्व व बंध निमित्तक गति आगति भले प्रकार ज्ञात नहीं हो सकती। ये गति आगति कब ख्याल में आ सकती है, कब जानी जाती है? तो वो उसके बंध स्वामित्व की बात पता हो तो, कौन से जीव को कौन सा बंध हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, कौन से गुणस्थान में कौन सा होता है, कौन सी मार्गणा वाला कौन सा बंध होता है। जैसे हमें मालूम है कि जो देव जो है उनको सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण का बंध ही नहीं होता, तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि देव मरकर निगोद नहीं जा सकता, ना वो द्विइंद्रिय तीनइंद्रिय आदि में जा सकता है, ना वो अन्य सूक्ष्म में जा सकता है। फिर पहले दूसरे स्वर्ग के तो और भवन अतिरिक्त तो एक इंद्रिय में जा ही सकते हैं, परंतु ऊपर के स्वर्गों के देवों को एक इंद्रिय संबंधी बंध ही नहीं होता है, तो हम कहेंगे वो तो जाएंगे तो वो नीचे वाले जा सकते, ऊपर के जाएंगे ही नहीं। तो ये बंधने कौन सी प्रकृति किसको, कौन से मार्गणा वाले को और कौन से गुणस्थान वाले को बनती है, हमें ख्याल आ जाएगा तो हम बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि होने के बाद वो 41 संबंधी प्रकृति का बंध नहीं होता, हम कहेंगे वो उस पर्याय में जाएंगे नहीं, क्योंकि वैसे उनको बंध नहीं है। उसकी बात आएगी जब हम बंध की बात सीखेंगे, तो ये कौन सा जीव कहाँ जन्म सकता है, कहाँ से आता है, समय दृष्टि मरकर कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है, ये जो गति आगति की बात वो स्पष्ट रूप से ख्याल में आती है। ऐसा जानकर 14 गुण स्थानों को अधिकृत करके, अधिकृत करके यानी उसको आधार बना के, अल्पायु शिष्यों के अनुग्रह के लिए बंध विशेष कहा जाता है। यह अल्पायु क्यों कहा पता नहीं, ये थोड़े में ही जान सके जल्दी, ऐसा इस तरह से कह सकते हैं। अल्पायु शिष्यों के अनुग्रह के लिए बंध विशेष कहा जाता है, उसका निर्देश ओघ और आदेश के भेद से दो प्रकार का है, ओग से यानी गुणस्थानों से और आदेश यानी मार्गणा की। शंका, वह निर्देश तीन प्रकार का क्यों नहीं होता? कुछ न कुछ तो शंका पूछे बिना इसका समाधान, ये क्या है, पेट नहीं भरता है। समाधान नहीं होता है, यानी निर्देश तीन प्रकार का नहीं हो सकता, क्योंकि वचन का प्रयोग पर के लिए होता है, यानी समझाने के लिए होता है, और पर भी दो नयों को छोड़कर है नहीं। दो नयों से बात करेंगे, द्रव्यार्थिक नय का हो गया, पर्यार्थिक नय से होगा, जिससे तीन प्रकार की या एक प्रकार की प्ररूपणा हो सके। या सामान्य से बताना है तो गुणस्थान से बताएंगे, विशेष से बताना है तो मार्गणा स्थानों में बताएंगे, इसलिए दो प्रकार का ही कथन होगा। ओघ निर्देश यानी गुणस्थानों की अपेक्षा कथन द्रव्यार्थिक नय वालों का, द्रव्यार्थिक यानी थोड़े में समझ जाए ऐसे शिष्यों के लिए, और इतर अर्थात आदेश निर्देश, आदेश निर्देश यानी मार्गणाओं में जो कथन है निरूपण है, वह पर्यायार्थिक नए वालों का अनुग्रह करता है। ये जो डिटेल में जानना चाहते हैं उनके अनुग्रह के लिए आदेश से भी निरूपण होता है, यानी दोनों ही प्रकार के शिष्यों के अनुग्रह के लिए आचार्यों ने ये दो प्रकार से कथन किया है। अब दूसरा सूत्र, ओघेन बंद सामित्य विचयस् चौदस जीव समासानि नादववाणी भवन्ति। ओघ की अपेक्षा चाहिए, की लगा उसको, ओघ के दिख रहे हैं ना, ओघ की अपेक्षा बंद स्वामित्व विचय के 14 जीव समास जानने योग्य है। कौन से 14 जीव समास, उसकी बात नहीं है, या 14 जीव समास भी गुणस्थानों को कहा है। पहले हमने देखा था गुणस्थानों को भी कहीं कहीं 14 जीव समास कहते, 14 गुणस्थानों को 14 जीव समास कहते हैं, उसकी बात होगी यहाँ। देखो गोग की अपेक्षा जब कहते हैं, गुणस्थानों की अपेक्षा जब बताने जा रहे हैं, तो 14 गुणस्थानों के नाम भी तो पता होने चाहिए, गुणस्थानों में चर्चा चलेगी, तो इसके लिए वे जानने योग्य है, यानी उसकी उसका भी पता होना चाहिए, तभी तो उसमें जो बात बताई जा रही है वो अपने ख्याल में आएगी। जैसा उद्देश्य वैसा निर्देश होता है, उद्देश्य यानी हमारा प्रयोजन क्या है, तो उस अपेक्षा से वैसा निर्देश यानी कथन भी होगा। इसके ज्ञापनार्थ ये समझाने के लिए ओघ से ऐसा कहा गया है, ओघ से यानी गुणस्थान की अपेक्षा, तो अपेक्षा बताएंगे, ये हमारा उद्देश्य हुआ, तो वैसा उसका निरूपण भी होगा। बंद स्वामित्व विचय के इसे संबंध में षष्ठी विभक्ति जाननी चाहिए, अथवा बंद स्वामित्व विचय में इस प्रकार विषय लक्षण सप्तमी विभक्ति के रूप में षष्ठी विभक्ति का निर्देश करना चाहिए। ये बंद स्वामित्व में जो है वो 14 जीव समाज जानने योग्य है, जो बात कही है उसको सप्तमी समझो या षष्ठी समझो, अर्थ उसका उस तरह से करना चाहिए। शंका, 14 जीव समास पूर्व में जाने ही जा चुके हैं, फिर उनकी यहाँ प्ररूपणा किस लिए की जाती है? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह कथन विस्मरणशील शिष्यों के स्मरण करना कराने के लिए, यह हमारे लिए है, ऐसा कहते हैं। हाँ, अच्छा है ना, ऐसा शील विल शब्द आगे लगाते हैं, ये क्षमाशील है, विनयशील है, वैसे ये कौन है, विस्मरणशील है। अब ये गुणस्थानों के नाम यहाँ बता रहे हैं, 14 गुणस्थानों के, मिच्छा इट्ठी, शासन सम्मा इट्ठी, सम्मा मिच्छा इट्ठी, असंजद सम्मा इट्ठी, संजदा संजदा, पमत्त संजदा, अपमत्त संजदा, अपूवकर्ण पैठ उवसमा खवा, अनियट्ठी बादर सांप्राय पैठ उवसमा खवा, सुम सांप्राय पैठ उवसमा खवा, उवसंत कसाय वीयराय चदुमत्था, खीण कसाय वीयराय चदुमत्था, सजोगी केवली अजोगी केवली। ये तो हमने बहुत विस्तार से और बहुत डिटेल में जाने हैं पहले, फिर भी याद करते उनको। मिथ्या दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण प्रविष्ट उपशमक व क्षपक, सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट उपशमक व क्षपक, उपशांत कषाय वितराग छद्मस्थ, क्षीण कषाय वितराग छद्मस्थ, सयोगी केवली और अयोगी केवली, ये 14 जीव समास है। पहले वे जानना चाहिए कहा था, तो ये उसके नाम यहाँ बता दिया। इस सूत्र का अर्थ, जैसे जीव स्थान में विस्तार से कहा गया है, वैसे ही यहाँ भी कहना चाहिए। ये जीव स्थान कहाँ पड़ा था? पहले 6 पुस्तकों का नाम जीव स्थान की चर्चा हो, पहले सत्व बताया, द्रव्य प्रमाण बताया, क्षेत्र स्पर्शन, वो सारा ही जीव स्थान था। तो पहले जो बताया जा चुका है विस्तार से बताया था, वैसे यहाँ भी कहना चाहिए, क्योंकि जीव स्थान से यहाँ कोई विशेषता नहीं है। 14 जो गुणस्थान है उसका स्वरूप पहले जो बताया था वही पर यहाँ भी कहना, यहाँ केवल नाम बताए परंतु उसका स्वरूप वैसा ही है जो हमने पहले जीव स्थान में देखे। इस प्रकार 14 जीव समासों के स्वरूप का स्मरण कराकर नाम बता दिया और कहते हैं कि स्वरूप समझ लेना, उसको याद करना। पहले जो हमने बहुत विस्तार से सीखा था उसको भी ख्याल में लेना, फिर से स्मरण कराकर बंध स्वामित्व के निरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। अब बंध के स्वामित्व की बात होगी, कौन से गुणस्थान वालों की कौन सी क्या क्या बातें यहाँ सब बताई जाएंगी। एदेसिम चौदसन्नम जीव समासाणम पयड़ी बंध वोच्छेदो कादव्वो भवदि। इन 14 जीव समासों के यानी 14 गुणस्थानों के प्रकृति बंध विच्छेद का कथन करने योग्य है, यानी कौन से गुणस्थान में कौन प्रकृति बंध की बात है, यहाँ कौन से प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति होती है। बंध विच्छेद यानी बंध की विच्छित्ति, बंध की विच्छित्ति यानी पहले तो बंध होता था, उस गुणस्थान के आगे बंध नहीं होगा। जैसे पहले गुणस्थान में विशिष्ट प्रकृतियों का बंध होता था, उनका बंध दूसरे तीसरे आदि ऊपर के गुणस्थानों में नहीं होगा, तो उसको कहेंगे हम ये प्रथम गुणस्थान संबंधी बंध की विच्छित्ति है। उनकी विच्छित्ति कहाँ हुई, पहले गुणस्थान में हुई, उसको कहेंगे वो पहले गुणस्थान की प्रकृति बंध संबंधी वहाँ विच्छित्ति हुई। देखो फिर पढ़ते इसको। इन 14 जीव समासों के प्रकृति बंध विच्छेद का कथन करने योग्य है, करने योग्य ने वो पहले जानने योग्य है कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का बंध विच्छेद होता है। जैसे मिथ्या तो प्रकृति कहाँ बनती है, पहले ही गुणस्थान में बनती है, और पहले गुणस्थान के अंतिम समय तक बनती है। जहाँ करण लब्धि का अंतिम समय है वहाँ तक मिथ्यात्व का बंध है, सम्यक तो प्राप्त होते ही उसका बंध नहीं होगा, तो उसकी बंध विच्छित्ति कहाँ हुई, तो पहले गुणस्थान में हुई। पहले से चौथे में गया है परंतु पहले के ऊपर दूसरे तीसरे में भी उसका बंध नहीं है मिथ्यात्व का, इसलिए उसकी बंध विच्छित्ति पहले में हुई कहने में आएगा। इसमें दो प्रकार से कथन आता है, यहाँ हम जहाँ उसका बंध है वहीं पर उसकी विच्छित्ति हुई कहेंगे। पहले में तो बंध है तो आप पहले में विच्छित्ति कैसे कहते हो, तो इसको कहते हैं जैसे हम अभी देवलाली में जाने वाले ना, तो वहाँ से कोई औरंगाबाद जाएंगे, कोई बम्बई आएंगे, कोई अन्य पुणे में जाएंगे, तो हम कहाँ बिछुड़े थे, देवलाली में। अरे देवलाली में तो इकट्ठे थे। तो वैसे वैसे यहाँ भी कथन होता है कि जहाँ बंद हो रहा है वहीं पर विच्छित्ति हुई, ये जो कथन है उस नए की अपेक्षा कहेंगे। प्रायार्थिक नय से जहाँ नहीं होगा बंध वहीं पर उसकी विच्छित्ति कही जाए, द्रव्यार्थिक नय से अभी वह बंध हो रहा है वहीं पर उसकी विच्छित्ति कही जाए। हम जब यहाँ कहेंगे जिस गुणस्थान में बंध है और जिसके ऊपर बंध का अभाव हो जाता है, तो जहाँ पर बंध हो रहा था वहीं पर उसकी विच्छित्ति हुई, ऐसा कहेंगे। अभी ये कौन सा नय है क्या है उसकी कन्फ्यूजन में अभी नहीं पड़ेंगे हम, बंध विच्छित्ति अब याद करनी है तो पहले गुणस्थान की बंध विच्छित्ति कितनी है, 16 की, तो उसको हम कहेंगे ये पहले गुणस्थान की बंध विच्छित्ति। दूसरे गुणस्थान में 25 की है, तीसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति ही नहीं है, चौथे वाले को 10 की है, पांचवे वाले को 4 की है, छठे वाले को 6 की है, ये हम क्रम से देखेंगे, सातवें वाले को 1 की है, आठवें वाले को जो 7 भाग है तो पहले 2 फिर 30 फिर 4 यानी 36 की होगी, नवे वाले को 5 की बंध विच्छित्ति, दसवें वाले को 16 की, ग्यारहवें बारहवें में विच्छित्ति नहीं है, और तेरहवें वाले को 1 की, चौदहवें वाले को बंध ही नहीं है, तो विच्छित्ति होने का सवाल नहीं है। अभी हम केवल हमें संख्या देखी, वो प्रकृतियाँ भी कौन कौन सी है। शुरू में नए लोगों को ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, कैसे, सब कंफ्यूजन बहुत है। एक बार उसको थोड़ा याद रखेंगे तो तो आगे वाला ये जो कोई जितना वर्णन आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक बार उदय की विच्छित्ति और बंधे की विच्छित्ति याद हो जावे तो कितनी प्रकृतियां ऐसी होती कि पहले बंधे मिट जाता है बाद में उसका उदय होता है, कितने का उदय पहले मिट जाता है और बंधे ऊपर के गुण स्थानों तक होता रहता है। ये सारे यहाँ जो चर्चा चलने वाली है उसका अधिक रस हम ले सकेंगे। अब ये बताएंगे कौन सी की कहाँ विच्छित्ति होती है। शंका, यदि यहाँ जीव समासों का प्रकृति बंध विच्छेद ही कहा जाता है, विच्छेद चाहिए, वो विच्छेद हुआ है, तो फिर इस ग्रंथ का बंध स्वामित्व विचय यह नाम कैसे घटित होगा? क्या कहते हैं? ये बंध के अभाव की बात आप कर रहे हैं, कौन से गुणस्थान में कहाँ कौन से बंध का अभाव होता है ये बात आप बताने जा रहे हैं, और ग्रंथ का तो नाम कहते बंध स्वामित्व, यहाँ स्वामित्व छुड़ा रहे हो आप, किसको बंध नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये ग्रंथ का नाम सिद्ध नहीं होगा। ऐसा ही शंकाकार की शंका है। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि इस गुणस्थान में इतनी प्रकृतियों का बंध विच्छेद होता है, ऐसा कहने पर उसके नीचे के गुणस्थान उस प्रकृतियों के बंध के स्वामी है। अभी हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इसके बंध की विच्छित्ति दूसरे गुणस्थान में होती है। इसका अर्थ क्या है? वो कहाँ कहाँ बनती है, दूसरे में भी और पहले में भी। दूसरे गुणस्थान में विच्छित्ति होती है ना, तो दूसरे में भी बंधेगी और पहले में भी बंधेगी। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के बंध की विच्छित्ति चौथे में होती है। इसका अर्थ वो पहले दूसरे तीसरे चौथे चारों ही गुणस्थानों में बनती है। यानी बंध का विच्छेद कहने से बंध का स्वामित्व भी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जहाँ विच्छेद है उसके नीचे के गुणस्थान वाले उसके स्वामी है, उसके बंधने वाले है। एक ही कथन में दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। दूसरी बात, तीसरी लाइन में स्वयं सिद्ध हो जाता है लिखा ना उसके आगे। दूसरी बात यह है कि विच्छेद दो प्रकार का है, उत्पाद अनुच्छेद और अनुत्पाद अनुच्छेद। उत्पाद का अर्थ सत्व और अनुच्छेद का अर्थ विनाश, अभाव अथवा निरूपता। जैसे अभी हमने देखा था ना, जहां बंध है वहीं पर उसका विच्छेद कहा जा रहा है, कथन में डिफरेंस है। जहां सत्व है वहीं पर उसका विच्छेद हुआ कहेंगे, और दूसरा नए क्या कहेगा, जहां एक्चुअल अभाव हो जाएगा वहीं पर हम उसका अभाव कहेंगे, जहां सत्व है वहां अभाव नहीं कहेंगे। ये दो नयों का अलग अलग कथन है। एक को कहा उत्पाद अनुच्छेद और एक को कहा अनुत्पाद अनुच्छेद। अनुच्छेद यानी उसका विच्छेद हो जाना जो है, वो कहां पर है, अभाव होने पर हम कहेंगे। कोई कहते जहां है वहीं पर कहेंगे, कथन में फर्क है। केवल उत्पाद ही अनुच्छेद, उत्पादानुच्छेद, इस प्रकार यहाँ कर्मधारय समास है। ये तो व्याकरण की बात बता दी कौन सा समास है। उक्त कथन का अभिप्राय भाव को ही अभाव बतलाना है, जहाँ है वहीं पर विच्छेद बताना है, भाव को अभाव बताना है ने? वो कहाँ पर उसकी समाप्ति होती है, तो जहाँ है वहीं पर बताएंगे। यह द्रव्यार्थिक नय के आश्रित व्यवहार है, द्रव्यार्थिक नय के आश्रित कथन है, व्यवहार है ने? आप कहेंगे एक बार द्रव्यार्थिक कहते एक बार व्यवहार कहते हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ऐसे दो भेद है ना, तो द्रव्यार्थिक किसको कहेंगे, सामान्य कथन की जहाँ है वहीं पर वो बताएगा, और पर्यायार्थिक एक्चुअल पर्याय कहाँ हुई अभाव वाली, तो दूसरे में, तो वहां दूसरे में कहेंगे। और यह एकांत से अर्थात सर्वथा चपल अर्थात मिथ्या नहीं है, क्योंकि उत्तर काल में विवक्षित पर्याय के विनाश से विशिष्ट द्रव्य पूर्व काल में भी पाया जाता है। उत्तर काल में विवक्षित पर्याय के विनाश से विशिष्ट द्रव्य, उत्तर काल में अभी जो हमने पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व के बंध विच्छित्ति कही, वो विशिष्ट द्रव्य, विशिष्ट द्रव्य ने उस जीव, कौन सी, अगले वाली पर्याय से युक्त ऐसा जीव, विशिष्ट द्रव्य ने उससे युक्त उत्तर काल में यानी आगामी समय में विवक्षित पर्याय के विनाश से युक्त द्रव्य, विशिष्ट द्रव्य यानी युक्त द्रव्य, यानी उस द्रव्य की अगले ही समय में उस पर्याय की व्यय, उसका पर्याय का व्यय होने वाला है। जैसे मिथ्यात्व के बाद करण लब्धि के अंतिम समय के पश्चात आगामी समय में वो मिथ्यात्व के बंध का अभाव होने वाला है। तो द्रव्य तो वही है ना, जिसका उत्तर काल में उसका अभाव होने वाला है। तो उस विशिष्ट द्रव्य है, वह द्रव्य तो वही है, तो उस द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वो बंध का विच्छेद उस पहले ही गुणस्थान में बता जाए। कथन में ये फर्क है, समझाना तो वही चाहते हैं। फिर शंका, द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा में विद्यमान पर्यायों का अभाव कैसे हो सकता है? जो अभी है उसको अभाव क्यों बता रहे हैं? ख्याल में आता है ना शंका उसकी? समाधान, यह कौन कहता है कि उनका वहां अभाव है? विच्छित कहने से ऐसा नहीं अर्थ कि वो पहले में उसका अभाव हो गया, किंतु वे वहां अप्रधान, अविवक्षित अथवा अनर्पित है। अनर्पित शब्द पहले सुना था कभी? हाँ हाँ बोलो, कहाँ सुना? तत्वार्थ सूत्र में, बहुत अच्छा। अर्पित अनर्पित सिद्धा, ये अर्पित और अनर्पित कथन की बात होती है। जिसको अविवक्षित कथन है उसको अनर्पित कहते हैं, और अर्पित यानी वो विवक्षित कथन। देखो, वहां वे अप्रधान है इसलिए उनके द्रव्यपना ही है, उसकी विवक्षा में पर्यायपना नहीं है। एक्चुअल अभाव वाली पर्याय नहीं है वहां पर, परंतु द्रव्य वही है, वो अगले समय में अभाव करने वाला है, इसलिए वहां द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा वो कथन घटित होता है। शंका, अस्तित्व के वश से, वश के द्रव्य से भिन्न पर्यायों के द्रव्यत्व कैसे संभव है? उसका समाधान, यानी अभी वो पर्याय है नहीं है तो उसको वो द्रव्यत्व कैसे घटित कर रहे हैं आप? यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न नहीं पाई जाती, किंतु द्रव्य स्वरूप ही वे उपलब्ध होती है। द्रव्य से वो सर्वथा भिन्न है ही नहीं है। फिर शंका, यदि ऐसा है तो फिर पदार्थ के अंतिम समय के समान द्विचर्मादि समयों में अभाव का व्यवहार क्यों नहीं किया जाता? जैसे मिथ्यात्व की विच्छित्ति कही आपने, मिथ्यात्व गुणस्थान में कही, तो कौन सी पर्याय की अपेक्षा, अंतिम समय के पर्याय की अपेक्षा, क्योंकि अगले ही समय में अभाव हो जाने वाला है। तो शंकाकार पूछता है, तो लास्ट बट वन समय में भी उसको कहा हो ना, उसको वहां विच्छेद हुआ, ऐसा क्यों नहीं कहते? उसकी शंका करके शंका है ना, चरम समय ने अंतिम समय में तो आप ये व्यवहार भले द्रव्यार्थिक नय लगाते हो, क्योंकि पर्याय तो उसी द्रव्य की है, तो आखिर से दो दूसरा समय द्विचरम जिसको कहते, लास्ट बट वन उपांत जिसको कहते, वहां भी यही नियम लागू करो। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, ये समाधान हुआ, समाधान, क्योंकि अंतिम समय के समान द्विचरमादिक समयों के अभाव के साथ प्रत्यासत्ति नहीं है। प्रत्यासत्ति का अर्थ, हाँ हाँ, नजदीकता, बहुत अच्छा। जैसे अंतिम समय कैसा है, आगामी अभाव वाले पर्याय के पूर्व का, अनंतर पूर्व वाला है, इमीडिएट प्रायर, उसकी नजदीकता है उसके, उस पर्याय के साथ। द्विचरम वाली वैसी नजदीकता नहीं, उसके बाद एक का गैप पड़ता है पीछे, तो इसलिए ये उपचार भी कहाँ हो सकता है, उस अंतिम समय पर हो सकता है, उसके पहले वाले समयों में नहीं। इसको प्रत्यासत्ति कहते हैं, नजदीकता। नहीं नहीं नहीं, एक काल में नहीं, वो काल प्रत्यासत्ति अलग, काल प्रत्यासत्ति निमित्त में लगती है। निमित्त में कैसे होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध एक ही समय में जो दो पर्याय हैं उनमें आपस में लगती है, वहां काल प्रत्यासत्ति बताया जाता है, वही काल होना चाहिए। अब यहाँ प्रत्यासत्ति यानी नजदीकता, वो पर्याय के पहले वाले पर्याय पर तो घटित होगा, और दो चार दस समय पहले वाले पर्याय पर लागू कर नहीं होगा। शंका, द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा अभाव का व्यवहार कैसे होता है? ये कहते हैं ये जो व्यवहार लगाया है अभाव का व्यवहार ना, विच्छेद का व्यवहार लगाया, तो द्रव्यार्थिक में अभाव की क्यों चर्चा कर रहे हैं आप, जो है उसकी कराओ। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि जो है वह दोनों का अतिक्रमण कर नहीं रहता, नहीं रहता कर सकता। यद अस्ति न तद द्वयम् अतिलंग्य वर्तत। अच्छा, जो है वह दोनों का अतिक्रमण कर नहीं रहता, करके नहीं रहता, इसे जो होता है वो दोनों का उल्लंघन करके नहीं रहता, अतिक्रमण करके नहीं, उल्लंघन। इसलिए दोनों का ने दोनों नयों का, इसलिए दोनों नयों का आश्रय कर। जो है यानी अभाव है कि नहीं है, अभाव की सत्ता है कि नहीं है? हाँ है ना, जैसे भाव है वैसे अभाव भी है क्या? नहीं है, हाँ, अभाव नहीं है कहेंगे तो भाव ही स्वरूप हो जाएगा, कोई अभाव रहेगा ही नहीं। अभाव भी है तो अभाव की भी सत्ता है, और जो है यानी अस्थि जिसकी होती है उसमें दोनों नए लागू होते हैं। देखो, इसलिए दोनों नयों का आश्रय कर, स्थित नयगम नय की अपेक्षा भाव में वह अभाव अभाव रूप का अभाव रूप क्या इति दो भी नए अवलंबी उन ठिद नेगम नयस भाव अभाव व्यवहार विहा विरोहा भावादो। विरोध का अभाव है, भाव में व अभाव में व्यवहार, भाव में वह अभाव रूप व्यवहार करने में कोई विरोध नहीं आता। यानी नैगम नय की अपेक्षा भाव में भी वह दोनों नयों का कथन हो सकता है और अभाव में भी दोनों नयों का कथन हो सकता है। अनुत्पाद का अर्थ असत्व और अनुच्छेद का अर्थ विनाश है, व्यय, असत्व। अनुत्पाद ने अभी वो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, और अनुच्छेद ने जो है उसका विनाश है, ख्याल है ना? दोनों भी अभाव रूप है, जो उत्पन्न नहीं हुआ है वो भी अभाव रूप है और जो विनाश है वो भी अभाव रूप है, परंतु एक को अनुत्पाद कहा और एक को अनुच्छेद कहा। यह अनुच्छेद रूप वो अभाव है, अनुत्पाद का अर्थ असत्व और अनुच्छेद का अर्थ विनाश है। अनुत्पाद ही अनुच्छेद, अनुत्पादानुच्छेद है। ये पहले बताया ना, उत्पाद अनुच्छेद और अनुत्पाद अनुच्छेद, उन्होंने दो बातें बताई कथन की, जो है उसका विनाश और जो असत यानी जो है ही नहीं उसका विनाश। ये जरा यहाँ करेक्शन है, अनुत्पादानुच्छेद है 7 नंबर के पृष्ठ पर। असत का अभाव, ये बीच में त रह गया, यह उसका, यहां वो त निकालना, यह उसका आशय है। पहले उत्पाद जो है उसका व्यय ऐसा कथन किया था द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से। देखो अस का हुआ ना, वहां असत का करना, असत का तीसरा शब्द वो खोड़ो वाला तो करना, खोड़ा वाला क्या कहते हैं, पाय मोड़ा, मराठी में कहते पाय मोड़ का, असत का अभाव। यह अगले वाला शब्द अब उसत का है ना, वो उसका करना, वो तो निकाल देना, कैंसिल करना, वो तो वो यहाँ वाला तो वहां से उसका मिक्सचर हो गया, देखो, असत का अभाव यह उसका आशय है, यानी जो असत है वही अभाव है। पहले में जो है उसका अभाव बताया था, अब जो नहीं है उसको ही अभाव कहेंगे। जब नहीं है ना तभी उसको अभाव कहेंगे, क्योंकि सत के साथ असत्व विरोध है। सत यानी सत्ता, और असत्व यानी उसके अभाव, उसका विरोध है। यह पर्यायार्थिक नय के आश्रित व्यवहार है। पहले द्रव्यार्थिक नय के आश्रित व्यवहार था, यानी कथन था। कौन सा? उत्पाद अनुच्छेद है, वहीं पर विच्छित्ति कही जाती है। और यहाँ अनुत्पाद अनुच्छेद, तो जहाँ नहीं है वहीं पर उसका अभाव बताया जाता है। तो यह पर्यायार्थिक नय के अवलंबन करके किया हुआ व्यवहार यानी कथन है। यहाँ पर चूंकि सूत्रकार ने उत्पाद अनुच्छेद का आश्रय करके ही अभाव का व्यवहार किया है, अभी हम हर जगह अलग अलग कथन नहीं करेंगे। जहाँ उत्पाद अनुच्छेद है यानी जहाँ उसका बंद होता है, उसके ऊपर के गुणस्थानों में नहीं होता है, वहीं पर उसकी विच्छित्ति कहेंगे। यही नय का अवलंबन किया है, इसी नय का। इसलिए प्रकृति बंध का सद्भाव ही निरूपित किया गया है। क्या कहते हैं, ये ख्याल में आए? एक ही कथन में दो कैसी बातें, जैसे मिथ्यात्व का बंध का विच्छेद कहाँ कहाँ है? पहले गुणस्थान। इसका अर्थ है जहाँ बंध होता था वहीं पर अभाव बताया है, यानी इस कथन में बंध की विच्छित्ति पहले में होती है कहने से पहले में उसका बंध होता है ये सिद्ध होता है कि नहीं? द्रव्यार्थिक नय का कथन करने से एक ही कथन में दो बातें सिद्ध हो रही है कि वो वहां पर उसका बंध भी है, तभी तो विच्छित्ति हुई। इस कारण इस ग्रंथ का बंध स्वामित्व विषय नाम बन जाता है। ये शंकाकार ने तो शंका नाम पर ही उठाई, तो ये नाम ही नहीं घटित होता, क्योंकि आप तो बात तो विच्छित्ति की कर रहे हैं और बंध स्वामित्व का नाम दिया है पुस्तक को, ग्रंथ को, यह कैसे होगा? एक बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ समझाया। अब आगे पंचन्नम नाना वर्णीयानम चतुर्नम दंशना वर्णीयानम जसकित्ति उच्चागोद पंचन्नम अंतरायणम को बंधो को अबंधो। पांच ज्ञानावर्णीय, चार दर्शनावर्णीय। ये दर्शनावर्णीय होते कितने हैं? नौ होते, उसमें से चार लिए, पांच निद्रा को नहीं लिया। यश कीर्ति उच्च गोत्र और पंच अंतराय, इनका कौन बंधक है और कौन अबंधक है? तो जहां इसकी बंध विच्छित्ति होती है वहां तक के सभी गुणस्थान वाले बंधक है कहेंगे। पता है ये दसवें में बंध विच्छित्ति, ये जो अभी जो लिस्ट बताई, तो एक पहले गुणस्थान से लेकर दसवें तक सारे ही इसके बंधक है कहेंगे। देखो, बंध शब्द से यहाँ बंधक का अभिप्राय प्रकट किया गया है। चूंकि प्रकृति समुत्कीर्तन नामक चूलिका में, पहले प्रकृति समुत्कीर्तन नाम की चूलिका हमने पढ़ी थी, कौन सी पुस्तक में? चूलिका वाली ही पूरी पुस्तक थी, छठा भाग, छठी पुस्तक में प्रकृति समुत्कीर्तन ने प्रकृतियों का वर्णन, तो उसमें मूल प्रकृतियों के नाम बताए थे, उसके बाद उत्तर प्रकृतियों के नाम सभी गिनाए थे। तो उसमें ज्ञानावरणादिकों का स्वरूप कहा जा चुका है, अतएव अब उनका स्वरूप यहाँ नहीं कहा जाता। ये ज्ञानावरण का स्वरूप क्या है, दर्शनावरण क्या क्या है, वहां उन्होंने बहुत विस्तार से बात देखी थी, क्योंकि ऐसा करने से पुनरुक्ति दोष आवेगा। वो कहते हैं यदि आप भूल गए हो तो वो पुस्तक निकाल के देख लेना, ऐसा कह रहे। हम कहते हम नहीं भूले, बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि अब पुस्तक कौन फिर खोलेगा, कौन बंधक है और कौन अबंधक है, इस निर्देश से यह पृच्छा सूत्र है अथवा यह आशंका सूत्र है ऐसा समझना चाहिए। यह प्रश्नात्मक सूत्र है ना, इसलिए क्या मिथ्या दृष्टि बंधक है, क्या सासाधन समय दृष्टि बंधक है, क्या सम्यक मिथ्या दृष्टि बंधक है, क्या असंयत समय दृष्टि बंधक है, इस प्रकार जाकर अभी 14 की 14 नाम लेना, क्या अयोगी बंधक है, क्या सिद्ध जीव बंधक है, ऐसी यहाँ पृच्छा करनी चाहिए। अब इसमें से किसको रखना और किसको निकालना वो बात बताएंगे, अभी तो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर तो आगे आएगा। यह देशामर्शक सूत्र है, इसलिए यहाँ क्या बंध की पूर्व में विच्छित्ति होती है। अभी एक ही सूत्र में कितने इसके प्रश्न में क्या क्या प्रश्न गर्भित है वो बता रहे, कि केवल कहाँ तक बंध का विच्छेद होता है इतने से नहीं बात चलती, और क्या उसमें से, क्या बंध की पूर्व में विच्छित्ति होती है, क्या उदय की पूर्व में विच्छित्ति होती है। देखो किसी गुणस्थान तक ही बंध होता है और उदय की विच्छित्ति भी अलग होती है, बंध की जो विच्छित्ति वाली लिस्ट है वो अलग है और उदय की विच्छित्ति वाली भी लिस्ट अलग है। हमने बंध की संख्या तो देखी थी, अब उदय की विच्छित्ति वाली संख्या कैसे है, पहले गुणस्थान में कहीं किसी ने 5 कहा है और किसी, वो तो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। दूसरे में 9 की विच्छित्ति होती है, तीसरे में 1 की, चौथे में 17 की, पांचवे में 8 की, छठे में 5 की, सातवें में 4 की, आठवें में 6 की, नौवें में 6 की, 3 वेद और 3 कषाय, दसवें में 1 सूक्ष्म लोभ वाली विच्छित्ति, ग्यारहवें में उदय की विच्छित्ति। मैंने सातवीं आठवीं की बात की क्या ना, ग्यारहवें में 2 की, 2 सहन, बारहवें में वो ज्ञानावरणादि वगैरह, हाँ कितने, 16, हाँ फिर तेरहवें में 29 की, 29 की उदय की विच्छित्ति, और चौदहवें में वो 12 की, 17 की नहीं, ये उदय की विच्छित्ति। तो यहाँ इस प्रश्न में ये गर्भित है कि आप किसी प्रकृति की उदय की विच्छित्ति या बंध की विच्छित्ति कहें नहीं, यहाँ क्या प्रश्न, क्या कौन बंधक है कौन अबंधक है ऐसा कहते हैं। और उसमें अभी हमने जो ये बातें देखी 5 ज्ञानावरण, तो 5 ज्ञानावरण की बंध की विच्छित्ति कहाँ, यानी कौन बंधक जीव है, तो हम कहेंगे पहले से 10वें तक के जीव बंध। तो उसमें प्रश्न क्या पूछा पहला, क्या बंध की पूर्व में विच्छित्ति होती है कि उदय की विच्छित्ति होती है। ज्ञानावरण में क्या होता है, पहले बंध की विच्छित्ति हो जाती है 10वें के अंत में यानी 10वें में, और 12वें में उदय की विच्छित्ति, यानी उदय 12वें तक है और बंध 10वें तक है। ये इसी प्रश्न में गर्भित है, ये प्रश्न 2 प्रश्न हुए ना अभी तक, देखो नीचे के 2 प्रश्न देखो, हम कितने हमने देखे थे, ज्ञानावरण दर्शन और यशकीर्ति, अभी उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले उसमें से कौन कौन से प्रश्न निकल सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। या क्या दोनों की साथ ही विच्छित्ति होती है, ऐसे जो मोहनीय वगैरह जो है ना, मिथ्यात्व जो है, जहां तक बंध है वहीं पर उसकी विच्छित्ति भी होती है, उदय भी वहां तक ही है, जहां बंध की विच्छित्ति है वहीं उदय की भी विच्छित्ति है, अनंतानुबंधी भी, जहां तक बंध है वहां तक उसका उदय भी है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान ऐसा ही है सब जगह, है ना, हाँ अधिक करके। अभी वो नौ कषाय वेदनीय, ये वेदों के बारे में थोड़ा कुछ अलग सा है, परंतु सामान्य चर्चा, हर एक प्रकृति के बारे में जो बात आएगी वो आगे चल के बताने वाले, वो यानी क्या वो बंध पहले रुक जाता है कि उदय पहले रुक जाता है, ये बात यहाँ पूछेंगे, हर एक प्रकृति के बारे में ये बात चलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि उदय पहले हो और बंध बाद में रुके, नहीं होता, उदय पहले और बंध बाद में हो, हाँ आहारक है ना, आहारक आहारक अंगोपा, बंध हो तो होता है 7वें 8वें में और उदय होता है 6ठे में, इसलिए इस प्रश्न में वो भी गर्भित है सारे। कौन से गुणस्थान में, नीचे के गुणस्थानों में कि ऊपर के गुणस्थान में, पहले और बाद में का अर्थ क्या है उसकी बात है, वो काल की अपेक्षा उसकी बात नहीं, हमेशा तो बंध तो पहले होने वाला है ये गुणस्थानों की अपेक्षा पहले बाद में ऐसा है हाँ, क्या दोनों की एक साथ विच्छित्ति, 3 प्रश्न हुए, क्या अपने उदय के साथ इनका बंध होता है? इसका अर्थ क्या है? ज्ञानावरण का जहाँ बंध हो रहा है वहाँ ज्ञानावरण का उदय है कि नहीं है? तो है, तो अपने उदय का साथ उसका बंध हो रहा है। अभी आहारक का जब बंध होता है उसके उदय के काल में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। आहारक का उदय कभी है? छठे में। वहाँ उसका बंध होगा कि नहीं होगा? छठे में बंद नहीं होता है, सातवें में होता है, आठवें तक, सातवें और आठवें में होता है, आहारक के उदय के काल में नहीं होता। तो यह क्या कहा? अपने स्व प्रकृति के उदय काल में होता है कि नहीं होता है? इसको स्वोदयी और परोदयी कहेंगे। पर यानी उसी टाइप की, यानी उसी जाति वाले अन्य कर्म। जब आगे विस्तार से समझाएंगे तो अभी पता चलेगा अपने को। जैसे उच्च गोत्र का बंध हो रहा है तो तब उच्च गोत्र का उदय है कि नीच गोत्र का उदय है? किसी का भी हो सकता है, दोनों। हाँ, तो स्वोदय भी और परोदय भी दोनों आए उसमें। हाँ, नीच गोत्र के उदय होते हुए उच्च गोत्र बनता है तो परोदय में उसका बंध हो रहा है, और उच्च गोत्र का उदय चल रहा है और उच्च गोत्र बंध भी रहा है तो स्वोदय वो बंध चल रहा है, स्वोदय प्रकृति में उसका बंध भी चल रहा है। इस तरह से वो भी प्रश्न इसमें गर्भित है। क्या पर प्रकृतियों के उदय के साथ इनका बंध होता है? पर प्रकृति ने अभी ज्ञानावरण के साथ दर्शनावरण नहीं लगाना है, ज्ञानावरण के साथ उसकी जो स्वजातीय अन्य प्रकृति लेना। हाँ, उत्तर प्रकृतियों के आपस में जो है, जैसे नाम कर्म की बहुत सारी है तो गति नाम कर्म बन रहा है, तो देवगति का उदय चल रहा है तो देवगति का बंध होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो वो स्वोदयी नहीं हो सकती, वो परोदयी ही कहलाएंगे, क्योंकि देवगति का बंध किसके होगा? मनुष्य और तिर्यंच गति के उदय में होगा, इसको स्वोदयी परोदयी कहेंगे। ये पांच प्रश्न हुए। या क्या अपने व पर दोनों के उदय के साथ इनका बंध होता है? अभी जैसे देवगति का तो स्वोदय होगा ही नहीं, परोदय ही होगा उदय, परंतु अन्य ऐसे कोई है, ऐसे पंचेंद्रिय जाति का बंध है तो एक इंद्रियों को भी हो सकता है, पंचेंद्रियों को भी हो सकता है, वो स्वोदय परोदय दोनों कहलाएगी। प्रश्न ख्याल में आते हैं? वो कौन सी प्रकृति है वो तो बाद में हम देखेंगे विस्तार से। अब कहते क्या सांतर बंध होता है? सांतर बंध यानी बंध हो रहा है और बीच में रुका, ये अंतर पड़ गया फिर उसका बंध होता है, क्या ऐसा बंध है? अभी ज्ञानावरण का बंध पहले से दसवें में हम देख रहे, दसवें तक, तो उसमें सांतर है कि नहीं है? दसवें तक निरंतर है, वो तो अध्रुव वाला हो जाएगा, उपशम में जाके फिर आया तो उसको अंतर पड़ेगा, तो अभी जहां तक विच्छित्ति होती वहां तो निरंतर चल रहा है, ख्याल है? हाँ। अब जो वेदनीय है, साता वेदनीय असाता वेदनीय, कभी साता बंधेगी कभी असाता बंधेगी, तो साता वेदनीय में अंतर पड़ सकता है। अब छठे से आगे अगर कहेंगे तो फिर निरंतर हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे तो असाता बनती नहीं है। कितनी अपेक्षा लिए, देखो एक प्रश्न में कितने प्रश्नों का उत्तर उसमें समा जाता है। ये सातवां हुआ, 23 प्रश्न है। अच्छा, अभी तो सात ही हुए हमारे। क्या निरंतर बंध होता है? ये सांतर निरंतर की बात हमने अभी देखी। या क्या सांतर निरंतर बंध होता है? यानी कोई तो निरंतर होगा, कोई सांतर होगा, कोई सांतर निरंतर दोनों होंगे। क्या स्वनिमित्तक बंध होता है? क्या अनिमित्तक बंध होता है? यानी निमित्त के कारण बंध है, निमित्त नहीं, यहाँ निमित्त कोई हाजिर है इसलिए बंध होता है। क्या निमित्त बिना वाला बंध होता है? स्वनिमित्तक अनिमित्तक, अभी आएगी ना बातें सब डिटेल में अभी। क्या मीन अनिमित्त, अनिमित्त वाला भी बंध होगा क्या कहते हैं? क्या गति संयुक्त बंध होता है या गति संयोग से रहित बंध होता है? अब मिथ्यात्व का जो बंध है किसी विशिष्ट गति के साथ होता है क्या? तो चारों गति में होता है, यानी उसका गति से कोई लेना देना नहीं, नहीं ख्याल में है? हाँ, चारों गति में होता है, किसी विशिष्ट गति में उसका बंध होता है ऐसी बात नहीं है, उसका गति संयुक्त कहेंगे। कितनी गति वाले जीव स्वामी है और कितनी गति वाले स्वामी नहीं है, कौन से गति वालों को वो बंद होगा और कौन से गति वालों को नहीं होगा, जैसे एक इंद्रियों का बंद करने वाले कौन कौन से गति वाले जीव है, मनुष्य, तिर्यंच और देव, सौधर्म, ईशान और बहुनत्रिक वाले देव, उनको एक इंद्रियों संबंधी बंद होगा, देव और नारकी अन्य देवों को और नारकियों को नहीं होगा। द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, विकलेंद्रिय संबंधी बंध किसके होगा, मनुष्य तिर्यंचों को ही होगा। इस तरह से देखना, ये 15 हो गए ना, बंध अध्वान कितना है और बंध की सीमा किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक है। बंध अध्वान यानी सीमा, मर्यादा, बंध का अध्वान यानी बंध की मर्यादा, कौन से गुणस्थान से लेकर कौन से गुणस्थान तक है, यानी वो बंध जो है, अभी हमने ज्ञानावरण की बात की, तो पहले से लेकर 10वें गुणस्थान तक, कहां से कहां तक, इसको उसकी मर्यादा यानी सीमा कहलाती हो, कौन से गुणस्थान तक है। क्या अंतिम समय में बंध की विच्छित्ति होती है, क्या प्रथम समय में बंध की विच्छित्ति होती है, बंध की विच्छित्ति अंतिम समय तक होती है कि पहले भी होती है, जैसे वो नित्रा प्रचला की बंध की विच्छित्ति जो है वो तो 12वें उदय की विच्छित्ति वो द्विचरम में होती है, हाँ हाँ, और निद्रा प्रचला की है जो 8वें के पहले भाग में होती है। वेद की विच्छित्ति जो है, हाँ, तो किस गुणस्थान थे योगे, कितने 16-17 प्रश्न हुए, क्या प्रथम समय बंध की विच्छित्ति 18 हो गए, या अप्रथम अचरिम समय में बंध विच्छित्ति होती है, अप्रथम यानी जो पहला नहीं है, अचरम जो अंतिम समय नहीं, यानी बीच वाला, जैसे 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग के अंत में, 8वें गुणस्थान का 6ठा भाग यानी वो पहला भी समय नहीं, अंतिम भी समय नहीं, वहां पर 30 प्रकृतियों की बंध की विच्छित्ति होती है, तो बीच में ही हो जाती है ना, तो इसलिए वो अचरम और अप्रथम हो गए। क्या बंध साधी है या क्या अनादि है, अब साधी बंध जब बंद हो रहा था फिर रुक गया, 11वें में से फिर 10वें में आया तो फिर साधी बंध कहलाएगा, और अनादि से अभी वो कभी गया ही नहीं 11वें में, तो ये अनादि से चला आ रहा है, ये अनादि है क्या साधी है। क्या बंध ध्रुव होता है या क्या अध्रुव है, ये होता है धाले, ध्रुव ही होता है क्या अध्रुव है, ऊपर क्या लिखा है, किम धुओ किम अधुओ अधुओति, कुछ भी लिखना है, इसे कुछ बात नहीं, ये 23 वाला यहाँ ब्रैकेट भी नहीं पूरा, इसलिए ये 23 पृच्छाएं पूछी गई इस पृच्छा में अंतर्गत है, क्या कहते हैं इस एक प्रश्न में ये 23 प्रश्न गर्भित है, अभी ये 23 के उत्तर दे दो, प्रश्न एक बताया उन्होंने प्रश्न एक पूछा ना, जवाब में 23 अलग अलग भले बताओ आप, यानी एक में, इसी को सूत्र कहते, कल बात आई थी ना आत्मसिद्धि में, गंधर्व है वो अति संक्षेप में रचना करते, उनको कहाँ ये हर एक सूत्र में इतनी डिटेल्स लिखने की कहाँ फुर्सत है, वो तो सूत्रात्मक बता दिए और उसमें कितना अर्थ गर्भित है, सूत्र उसी को कहते जो मिनिमम अक्षरों में वो रचा जाए, अभी जो तत्वार सूत्र के सूत्र है एक एक सूत्र में इतना सा दो शब्दों का, तीन शब्दों का, चार शब्दों का, और उसमें से कितने पेजेस भर भर के उसके ऊपर जो टीकाएं जो है, एक्सप्लेनेशन, तत्वार्थ राजवार्तिक, ये श्लोक वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, और कितने कितने सारे जो अभी हम पढ़ते, यहाँ हमने जो देखा रामजी भाई ने उस पर मोक्ष शास्त्र जो लिखा है, ये सूत्र तो इतने से है और उसमें से कितनी चर्चा की है, तो ऐसे ये सूत्र तो इतना है उसमें से कितने एक प्रश्न में 23 प्रश्न निकाल के लिखा है, अर्थ प्रकाशिका नाम का एक तत्वार सूत्र के ऊपर टीका है, वो पंडित सदाशिवदास जी उन्होंने लिखी, बहुत गजब की है ढुंडारी भाषा में। अंतर का ऐसा जाना, यहाँ उपयुक्त आर्ष गाथाएं, आर्ष यानी मुनियों के द्वारा जो रची गई और ऋषियों के द्वारा, आर्ष हाँ जो ओरिजिनल गाथाएं जो है या आगम की गाथाएं बता रहे हैं। बंधो बंधवी पुण सामित धान पच्चय विहीय एदे पंचणियोगा मगन ठाणे सुमगे जा। एक एक का अर्थ देखते नीचे। बंध, बंध विधि, बंध स्वामित्व, अध्वान अर्थात बंध सीमा, हमने कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक उसको अध्वान कहते हैं। और प्रत्यय विधि, प्रत्यय हम कहते हैं आश्रमों को भी प्रत्यय कहते हैं, उसके बंध के कारण हेतु। ये पांच नियोग अनुयोग, नियोग यानी अनुयोग यानी उसकी जो पांच अलग अलग जो प्रकार है इसके द्वारा मार्गणा स्थानों में खोजने योग्य है। ये जो बंध वगैरह जो है पांच प्रकार बताए हैं, मार्गणा स्थानों में भी इसको खोजना चाहिए। गुणस्थानों में कहेंगे इसको, मार्गणा में भी देखना। अभी एक से दसवें गुणस्थान की बात की, वो दसवें गुणस्थान कौन से गति वाले को होगा, मनुष्य गति वाला होगा, वो पंचेंद्रिय जाति वाला आदि आदि। अब तीन नंबर की, बंधो दयपूवं वा समं वनीयेण कस्सव परेण अन्नदर सुदयेण व सांतर विगयंतरं काच। ये जो 23 प्रश्न पूछे ना, क्या तीन और चार साथ में, अच्छा चौथी भी पढ़ेंगे। पच्चय सामित्त विही संयुक्त धारणेन तह चेय सामित्तम नेयवम पयडीनम ठाणमासेज। उसका अर्थ नीचे देखो, बंध पूर्व में है, उदय पूर्व में है। अभी जो हमने प्रश्न पढ़े ना, ये भी जानने योग्य है ऐसा जो कथन आया था उसके लिए ये जो आधारभूत गाथाएं बता रहे। बंध पूर्व में है, उदय पूर्व में है या दोनों साथ है। किस कर्म का बंध निज के उदय के साथ होता है, किसका परखे उदय के साथ, इसकी चर्चा हमने की ना अभी। अपनी सजातीय प्रकृति के उदय के साथ होता है या अपनी प्रकृति वही प्रकृति के उदय के साथ होता है उसकी भी बात। और किसका अन्यतर के उदय के साथ, कौन प्रकृति सांतर बंध वाली है और कौन निरंतर बंध वाली है। प्रत्यय विधि, स्वामित्व विधि तथा गति संयुक्त बंध अध्वान, बंध अध्वान यानी बंध की सीमा, उसके साथ प्रकृतियों के स्थान का आश्रय कर स्वामित्व जानना चाहिए। प्रकृतियों के साथ यानी कितने प्रकृतियों का बंध, उसको स्थान कहते हैं, प्रकृतियों के स्थान, उसका स्वामित्व जानना चाहिए। अब पांच नंबर की, बंधोदय पूवं वा समं वसपरोदये तदुभयेण सांतर निरंतरं वा चरिमे दर्शादियादिया। बंध पूर्व में होता है, उदय पूर्व में होता है या दोनों साथ होते हैं, वह बंध स्वोदय से परोदय से या दोनों के उदय से होता है। उक्त बंध सांतर या निरंतर है, वह अंतिम समय में होता है या इतर समय में होता है, तथा वह सादी है या अनादि है। यहाँ इन पृच्छाओं में विषम पृच्छाओं का अर्थ कहते हैं वह इस प्रकार है। ये जो अलग अलग जो प्रश्न उसके अर्थ यहाँ बता रहे, चूंकि बंध विच्छेद इसी ग्रंथ में सूत्र सिद्ध है, बंदर की उच्छित्ति इसी ग्रंथ में बताने वाले हैं। अतएव उसको छोड़कर प्रकृतियों के उदय विच्छेद को कहते हैं। इस ग्रंथ में उदय की, क्योंकि ये बंदर के स्वामित्व की बात है ना, तो बंदर के स्वामी तो उसी से पता चलता है, जहाँ विच्छेद बताएंगे तो उसके पहले तक बंदर के स्वामी है, परंतु यहाँ उदय के स्वामित्व की या उदय की विच्छित्ति की बात इस ग्रंथ में सूत्र रूप से नहीं बताई है, इसलिए उसको यहाँ बताया जा रहा है। क्या है? क्योंकि बंदर की विच्छित्ति आगे इसी पुस्तक में बताने वाले हैं, यहाँ पर उदय की विच्छित्ति बताते हैं, तो ये जो उन्होंने बताया था उदय पहले रुकता है क्या बंद पहले रुकता है, अब हमको उदय मालूम होगा और बंद तो इसमें बता ही जाने वाले हैं, तो जब जब ये प्रश्न ऐसे आएंगे कि कौन सी प्रकृतियों का पहले बंद रुकता है क्या उदय रुकता है, तो उसका जवाब हमें पता चलेगा। तो ये उदय विच्छेद को बता रहे हैं। अभी प्रत्येक गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृतियों के उदय की विच्छित्ति है वो यहाँ बताए जा रहे हैं। पहले और दूसरे गुणस्थान के संबंध में दो मत है, मिथ्यात्व के बारे में नहीं और अनंतानुबंधी के बारे में भी नहीं है। तो किस बारे में है? तो पहले गुणस्थान के उदय की विच्छित्ति मिथ्यात्व, फिर सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त और आत्म, और जो एकेंद्रिय स्थावर बेइंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय, ये जो आगे वाले अभी मैंने बताए, वो कोई आचार्य कहते वो दूसरे गुणस्थान में विच्छित्ति होती है और कोई आचार्य कहते वो पहले में ही विच्छित्ति होती है। अगर इनको पहले में लेते हैं तो दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चार ही रह जाते हैं, यानी कोई पहले में पांच और दूसरे में नौ मानते हैं। यह ये दोनों ही मत यहाँ प्रस्तुत किए हैं। देखो, मिथ्यात्व एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय जाति, आतप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, इन दस प्रकृतियों का उदय विच्छेद मिथ्यादृष्टि गुणस्थान के अंतिम समय में होता है। यानी यहाँ तक ये प्रकृतियां बनती है, आगे के गुणस्थानों में नहीं बनती। सॉरी, उदय की बात चले, उदय की मिथ्यात्व गुणस्थान में उदय है, आगे इनका उदय नहीं है। यह महाकर्म प्रकृति प्रावृत का उपदेश है। चूर्णी सूत्रों के कर्ता यति ऋषभ आचार्य के उपदेश है, यानी यति ऋषभ आचार्य के उपदेश के अनुसार ये उदय की विच्छित्ति दूसरी पद्धति से बताइए। वो कौन सी है? मिथ्यात्व गुणस्थान के अंतिम समय में पांच प्रकृतियों का उदय विच्छेद होता है, क्योंकि चार जाति और स्थावर, इन प्रकृतियों का उदय विच्छेद सासादन समय दृष्टि गुणस्थान में माना गया है। यानी उन्होंने अनंतानुबंधी एकेंद्रिय स्थावर और बेइंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय, इनके उदय की विच्छित्ति दूसरे में मानी है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय विच्छेद सासादन समय दृष्टि गुणस्थान के अंतिम समय में होता है, यानी उस गुणस्थान वाले को उसका उदय है। सम्यक मिथ्यात्व का उदय विच्छेद सम्यक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में होता है। यह बंदे की बात नहीं चल रही हो, उदय की बात चल रही। तो मेरा प्रश्न है, सम्यक मिथ्यात्व के बंदे की विच्छित्ति कहाँ होती है? उसका बंद ही नहीं होता, वो बंधने वाली प्रकृति नहीं है। मिथ्यात्व में से वो तैयार हुई है, जब उपशम सम्यक्त्व के काल में तीन टुकड़े होते हैं तब वो बनी है। उसके उदय का तो विच्छेद हो सकता है, क्योंकि उदय तो एकमात्र तीसरे में है, अन्य कहीं भी उसका उदय नहीं है, तो उसकी विच्छित्ति उदय की विच्छित्ति तीसरे में कहेंगे। ये उदय की विच्छित्ति अगर याद करेंगे ना, एक अभी पहले जिन्होंने बहुत बार सुना है उसकी शायद याद भी होगी। अब मैं तो कहूंगी जो नए हैं वो इसको जरा एक बार दो तीन बार रट ले तो अच्छा रहेगा, आगे जब इसकी चर्चा निकलेगी, नहीं तो ऐसा कंफ्यूजन होता है ना, अरे कौन सी उदय की विच्छित्ति कहाँ है, हमें तो कुछ नहीं मालूम। इसके लिए और कुछ नहीं है, मैं पूछूंगी ना एक एक से, क्योंकि इतना अपने पास समय भी नहीं होता। देखो, ये सम्यक मिथ्यात्व की उदय की विच्छित्ति हो गई। अब अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये चौथे गुणस्थान में 17 की उदय की विच्छित्ति है। अप्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ, ये चौथा गुणस्थान कौन से गति वालों तक होता है, यानी जिस गति में आगे नहीं ऐसा देव और नारकी में चार तक है आगे के नहीं है, तो उदय की उच्चिति उनके लिए यहाँ इसलिए देवगति देवगत्यानुपूर्वी नरगति नरगत्यानुपूर्वी। अब देव और नारकियों के वैकृक वैकृक अंगोपांग भी होता है उदय, तो वैकृक वैकृक अंगोपांग, फिर उनके उस आयु का भी उदय है देवायु और नरकायु, इतने तो हो गई 12। अब कहते हैं ये तो विग्रह गति में ही चौथा गुणस्थान मनुष्य और तीर्यंचों के हो सकता है, ये अनुपूर्वी का उदय, अनुपूर्वी का उदय विग्रह गति में ही होता है, और विग्रह गति में चौथे के आगे गुणस्थान नहीं होते हैं, इसलिए तीर्यंच गत्यानुपूर्वी और मनुष्य गत्यानुपूर्वी 14 हुए, और दुर्भग अनादेय और अयशस कीर्ति, ये तीन प्रकृतियां, इस तरह से 17 प्रकृतियों के उदय की विच्छित्ति चौथे में होती है। उसका कारण अगर हम ख्याल में रखते हैं तो प्रकृतियां भी याद हो जाती है। देखो अभी यहां से पढ़ेंगे, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये तो हमें मालूम है कौन से गुणस्थान में कौन से कषाय चोकड़ी जाती है या कौन सा उदय है का। नरकायु देवायु, नरक गति देवगति, अब इस गति के साथ वाला होता है वो वैक्रेक शरीर वैक्रेक शरीर अंगोपांग, चारों ही अनुपूर्वी ली, देवगत्यानुपूर्वी नरगत्यानुपूर्वी तो लेते ही है, तिरंज और मनुष्य गत्यानुपूर्वी क्यों ली, क्योंकि वो चौथा गुणस्थान ही हो सकता है उनका अधिक से अधिक विग्रह गति में। दुर्भग अनादेय और अयशस कीर्ति, इन 17 प्रकृतियों का उदय विच्छेद असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में होता है, वो स के ऊपर बिंदी लगाना। अब पांचवें गुणस्थान की बात करेंगे, तो पांचवें गुणस्थान में कौन सा कषाय है, प्रत्याख्यान और संज्वलन दोनों है, तो उसका उदय तो पांचवें तक है, आगे उसका उदय नहीं है, तो प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ। अब पांचवा गुणस्थान तीर्यंचों में हो सकता है, तो तीर्यंच आयु का उदय भी पांचवें तक रहेगा, तीर्यंच गति भी पांचवें तक रहेगी, और तीर्यंच के साथ होता है ऐसे उद्योत भी उसका उदय रहेगा पांचवें में, और तीर्यंचों के साथ निज गोत्र है उसका भी उदय पांचवें तक ही होगा, इस तरह से ये 8 है। देखो प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, तिर्यक आयु वो थ दिख रहा है वो य करना, आगे भी तिर्यक गति उद्योत और निज गोत्र, इन 8 प्रकृतियों का उदय विच्छेद संयता संयत गुणस्थान में होता है। अब छठे की बात करेंगे, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान वृद्धि, यानी जो तीन निद्राएं होती है, और हमने पहले देखा था आहार कहार कंगोपांग, आहार शरीर और आहार शरीर अंगोपांग, इन 5 प्रकृतियों का उदय विच्छेद प्रमत्त संयत गुणस्थान में होता है। अब सातवें गुणस्थान की बात करेंगे, सातवें गुणस्थान में यहां 3 सहनन लेना, नीचे के 3 सहनन और एक सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति का उदय तो क्षोभशम सम्यक को होगा, और क्षोभशम सम्यक तो सातवें तक ही होता है, ऊपर के श्रेणियों में तो या तो उपशमिक होगा या तो क्षायिक होगा, बराबर, तो सम्यक प्रकृति का उदय यहाँ तक है, इसलिए अर्धनाराज कीलित असंप्राप्त सृपाटिका सहनन और वेदक सम्यक्त्व लिखा है उन्होंने, और सम्यक्त्व शब्द 2 बार है वो एक बार ही रखना, वेदक सम्यक्त्व यानी सम्यक प्रकृति, इन 4 प्रकृतियों का उदय विच्छेद अप्रमत्त संयत गुणस्थान में होता है। अब ये 7वें तक ही हम रुकेंगे, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देतो डो। अश्विन भाई